أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى الخصوص على أمير المؤمنين ويعصوب الدين وآيته الكبرى والنبأ العظيم مولانا ومقتدانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال فزت ورب الكعبة، والذي قال في شانه قتل علي في المحراب لشدة عدله، وقال الجبرائيل تحدمت والله أركان الهدى قتل علي المرتضى. لعنة الله على عدوه وقاتله ابن ملجم المرادي. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: التقدير في ليلة 19، والإبرام في ليلة 21، والإمزاء في ليلة 23. اب تمام عاشقان اور مواليان مولى الموحدین امیر المومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب بارگاہ ملکوتی صاحب العصر و الزمان کے حضور عرض ادب کرتے ہوئے تعزیت پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایام اور یہ دن ایک منفرد دن ہے جو ہر سال نصیب ہوتے ہیں ہم انسانوں کے لیے. جو میرے پاس وقت ہے تیزی کے ساتھ، اصل میں مجھے اپنی گفتگو کو دو حصوں میں بانٹنا ہوا، اور یہ دو حصوں کو 3 پوائنٹس کی شکل میں اور اینڈ پہ مصائب کی شکل میں انشاءاللہ مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آغاز کرتے ہیں چھٹے امام کی وہ حدیث جس کو میں نے سرنامے کے طور پر شرف پایا کہ آپ کے سامنے عرض کروں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو راتیں ہیں، یہ جو مقدرات سے تعلق رکھتی ہیں، تقدیر انسانی سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ 3 راتیں ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ کنفیوژن، صرف اور صرف کنفیوژن کی وجہ سے تینوں راتوں کو شب قدر قرار دیا گیا یا طاق راتوں کو شب قدر قرار دیا گیا. وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ میں ہے کہ میکسیمم جتنی فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے کر لے، لیکن اصل بات یہ ہے مقدرات 19 کی رات کو تعین یا ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے، ان کو تعین کیا جاتا ہے مقدرات انسانی کو. جب 19 کی رات، وہ شب ضربت کی اس رات کو جب وہ بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتا ہے، پھر 21 کی جو رات ہے والابرام فی لیلتی 11، یہ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے اور بہت ہی مستند ہے، 21 کی رات کو اس کی تصدیق اور تائید ہو جاتی ہے، کنفرم کیا جاتا ہے مطلب. اور جو 23 کی رات ہے جو کل آنے والی ہے، اس رات سمجھے کہ والامزاء فی لیلتی 23، 23 کی رات اس کے اوپر فائنل سگنیچر ہوتے ہیں. لفظ امزاء استعمال کیا ہے مولا نے، امزاء کا مطلب ہوتا ہے سائن کرنا، مہر لگا دینا، تصدیق کر لینا، اور فائنل سربا مہر کرنا اس لفافے کو فائنل سگنیچر کے بعد کہ بھائی یہ اب ہو گیا ہے، سارے پروسیس اس نے طے کر لیا. تو بس معلوم ہوتا ہے کہ 19 کی رات معین کر لیتے ہیں ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں، پھر 21 کو جو گزشتہ رات تھی اس کی ہم نے تائید حاصل کی ہے، کنفرم کیا، کنفرمیشن لے لی ہم نے، اور جو چیز باقی بچتی ہے وہ فائنل سگنیچر ہے چھٹے امام کے حساب سے، وہ جو ہے آنے والی رات ہے. تو یہ تینوں راتوں کو کھو دینا یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں، اور یہ تینوں راتیں ہمارے مقدرات اور اس سے تعلق رکھتی ہیں. بنیادی طور پر ہم ان راتوں میں کرتے کیا ہیں، کیونکہ دو بڑی مناسبتیں ہیں، ایک قرآن صامت کا نزول ہے، دوسرا قرآن ناطق کی شہادت ہے۔ دو اہم کام بنیادی طور پر ہم کرتے ہیں جتنے بھی اعمال ہیں، ایک ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں، دوسرا ہم جو ہے قرآن اور عترت یعنی قرآن ناطق و صامت سے ہم توسل اور تمسک کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا ان دو مین ایلیمنٹس کی وجہ سے ظاہر ہے اس دعا کے اندر توبہ ہے، استغفار ہے، مناجات ہے۔ اب دعا کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، دعائے جوشن کبیر جیسی باعظمت ترین دعا اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، دعائے کمیل ہو سکتی ہے، اور مختلف دعائیں جو ہیں وہ ہیں۔ توسل کے اندر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک و طیب و طاہر و اطہر و لا یزال سے شروع کرتے ہیں اور آخری معصوم امام زمانہ تک توسل کرتے ہوئے 10-10 مرتبہ آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم جو ہے ولی اللہ کے قاتل کے اوپر گزشتہ 2021 اور 2019 کی راتوں میں ہم اس سے خدا سے کی بارگاہ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر لعنت کرے، یعنی رحمت خدا سے دور ہو جائے کمپلیٹ اور مکمل طور پر۔ جب یہ مرحلوں سے ہم گزرتے ہیں تب جا کر ہمیں 23rd میں جا کر فائنلی اس لیول پہ پہنچتے ہیں ہم۔ البتہ یہاں پر ایک چیز ہے کہ وما ادراکا، یعنی درک کرنا اس رات کو کمپلیٹلی، جس طرح کما حق کہو اس رات کے اعمال انجام دیے جانے چاہیے، جو کیفیت ہونی چاہیے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو ہمارے لیول سے اوپر ہے تو ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے لیول میں رہیں گے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اعمال انجام دیں اس رات کو، ہی حتیٰ مطلع الفجر تک ہم جاگ کے گزاریں، کم سے کم بغیر کسی ریزن اور وداؤٹ کسی اس کے نہ سویا کریں، آرام نہ کریں اس رات کو کم سے کم، کیونکہ یہ رات درست ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ 1000 مہینے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایک انسان کی پوری لائف بنتی ہے، یعنی ایک رات پوری لائف کے برابر ہے، 83 پوائنٹ سمتھنگ ایئر بنتے ہیں 1000 مہینے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پوری زندگی ہے ایک انسان کی، 83 سال اگر وہ جی سکے تو۔ تو لہٰذا جو ہے کیا اچھا نہیں ہے کہ انسان پوری زندگی کی عبادت و بندگی ایک رات میں پا رہا ہے، اور وہ رات بھی کوئی 24 آور نہیں ہے، مغرب کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک ہے، ایک شارٹ پیریڈ ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ کہتے بھائی یار اتنا سا ٹائم صرف عبادت میں گزارو، بھائی طے کرو اس کے لیے۔ تو علماء اور عرفاء پورا سال اس کے لیے پروگرام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کے لیے اسکیجول بناتے ہیں کہ اس کے ایک ایک سیکنڈ اور مائکرو سیکنڈ کو بھی ہم ضائع نہ کریں، حتیٰ ٹوائلٹ میں جانے کے لیے جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم بچا لیں، کیونکہ کتنا ٹائم ہے آخر مغرب سے صبح فجر تک، کچھ گھنٹے ہی تو ہیں، پورا سال ہم اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہوتے۔ تو یہ چند گھنٹے بھی آپ دیکھیں بینی و بین اللہ، اپنے اور اپنے مولا کے کو سامنے حاضر و ناظر سمجھ کر انصاف سے خود سوچے، کیا یہ سارے گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں ہمارے؟ کیا پورا 100% فوکس ہوتا ہے؟ بھائی سال میں یہ 3 راتیں تو ہیں، باقی پورا سال ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں، کہتے ہیں عبادت میں گزارے، ایک ایک سیکنڈ کو گزارے، کیا اس طرح کی پروگرامنگ ہم کرتے ہیں؟ یہ ادراک اور درک کی جو میننگ ہے وہ اس طرح کی ہی چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ لہٰذا کہا کہ ایک رات پوری عمر کے برابر ہے، اب ہمیں اگر خوش نصیب ہوں تو کتنی اتنی راتیں پوری زندگی میں نصیب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص یعنی شب قدر کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، گویا اس نے 83 پوائنٹ سمتھنگ ایئر 2-2 رکعت نمازیں پڑھی ہیں، ایسا ہی ہے نا کہ 83 ایئر، اے آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھی تو گویا میں نے پوری زندگی 2-2 رکعت پڑھتا رہا، آج کی رات میں نے اگر بارگاہ خدا میں استغفر اللہ واتوب الیہ کہا ہے، پوری شاید پوری زندگی 83 پوائنٹ سمتھنگ ایئر میں استغفر اللہ کہتا رہا ہوں، آج دعائے جوشن کبیر پڑھوں تو اسی طرح ہے۔ اگر جو ہے فرض کرے کہ میں اگر اپنی زندگی میں ایسی 10-20-30-40-50 راتیں اگر مجھے ملتی ہیں، تو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں کہ ہر ایک رات الف شہر 1000 مہینے، اور 1000 مہینے کے مطلب 83 پوائنٹ سمتھنگ ایئر، تو اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی باعظمت ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کتنی بڑی عطا و بخشش ہے بارگاہ الہی کی طرف سے، اور کتنی خیر و برکت ہے پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین اور ان کی پاک و طاہر آل کی جانب سے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے تو بعض لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کہ ऐसा सच्चाई होगा या मोटिवेशन कोई वो वर्ड है, ये मोटिवेट करने, नहीं ऐसा नहीं है। उलमा और अरफा एक शब कदर खत्म होती है, अगले शब कदर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सैयद इब्न ताऊस जैसी शख्सियत, शेख मुफीद हो, शेख तूसी, और इवन हमारी सदी के अंदर भी जो हमारे फुकाह मुज्तहिदीन है, रहबर के बारे में ये बातें हम सुनते हैं, आजवादी आमली के बारे में और उजमा के बारे में सुनते हैं कि वो ये शब कदर गुजरेगी अभी 23 को, अब ये प्रिपरेशन शुरू करेंगे अगले आने वाले साल की शब कदर के लिए, और दुआ भी करते रहेंगे खुदाया मुझे अगले साल शब कदर दे देना, क्योंकि 83 साल की इबादत तो बंदगी मुझे एक रात में मिल रही है, तो मैं क्यों महरूम करूं अपने आप को। इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि इसका एक एक सेकंड जाया ना हो। हम में से बहुत से लोग बाज औकात हम देखते हैं इमाम बारगाहों में, सेंटरों में, मस्जिद में, बाज लोग आते हैं माशाल्लाह से, जाके भी गुजारते हैं माशाल्लाह से, आमाल के एक बड़े हिस्से में भी बड़ी अटेंशन के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं फिर फजूलियात में जाया करते हैं। और आजकल तो ये जो मोबाइल फोन है, ये जहां रहमत है वहां बहुत बड़ा एक मुसीबत और शैतान भी बन जाता है हमारे लिए। आज की रात अगर इस फोन के अंदर सिर्फ दुआ और मफातिहुल जिना और कुरान खुलता रहे तो कितना अच्छा है। बाज लोगों को मैं जानता हूं, बेखुदा कसम, वो व्हाट्सएप डिलीट कर देते हैं, वो बहुत सारे एप्लीकेशन डिलीट करते हैं, कहते ये रहेंगी तो मजबूरन भी देखना पड़ेगा। बाज लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने टेलीफोन बंद कर देते हैं इस रात, वो कहते हैं मुझे ये चंद घंटे जो है ना पूरी दुनिया से कट जाना है, मुझे सिर्फ खुदा से जुड़ना है, तवस्सुल करना है कुरान और इतरत के साथ। लोग इस तरह करते हैं, हम ही लोग हैं कि हम इतनी लेवल की सआदत पाने की कोशिश भी करते हैं, इंशाल्लाह नहीं पाते। बहरहाल खुदा अरहमुर्रहीम है, मौलाए कायनात जो कि गैर मुसलमानों के लिए भी दर्द रखते थे, तड़पते थे, किसी इंसान को किसी मजबूरी में, किसी कसम पुरसी में, किसी तकलीफ में देखते थे तो वो तकलीफ उस इंसान से ज्यादा मौला को महसूस होती थी। हजारों ऐसे वाकयात, अगर न कहें तो सैकड़ों ऐसे वाकयात हैं, अगर सैकड़ों भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो दसियों और दर्जनों ऐसे वाकयात हैं सीरत मौला के अंदर, फिर कलाम मौला है जिसके अंदर ये चीजें मिलती हैं कि इंसान किसी जानवर को भी अगर देखते हैं तकलीफ में पाते हैं, कोई शख्स अगर किसी दरख्त को बेजा काटते हैं तो वो भी दर्द महसूस करते हैं मौलाए कायनात। तो लिहाजा ये जो रातें हैं, इन रातों में अगर हम उनके मानने वाले हैं, जाहिर है कि हमारी जो हालत है, हमारी जो मजबूरियां, जंजीरें हैं, जिन जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, वो जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ये हम तकलीफ में है ना, इस तकलीफ से तबस्सुल करने से यकीनन वो मौला है, वो करीम के नुमाइंदे, वो रहमान के नुमाइंदे, कामिल व अकमल व अतम है, वो तजल्ली सिफात रहमानियत व रहीमियत इलाही है, तजल्ली कामिल है, वो यकीनन इनायत करेंगे। साहिबुल असर व जमान जिनके पास मुकदरात आती है, इंशाल्लाह बहस करेंगे हम। तो लिहाजा एक पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर इस रात की इतनी ज्यादा फजीलत की वजह क्या है। जाहिर है बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें आप वाकिफ हैं माशाल्लाह से, आप बामारिफत लोग हैं, अच्छे उलमा और मुझसे बेहतर उलमा को सुनते हैं। पहली बात तो इसमें यही है कि कुरान की जो हकीकत है पूरी की पूरी कंप्लीटली कल्ब ताहिर व अतहर व मुतहर हुजूर पाक में पूरी की पूरी हकीकत नाजिल हुई है, और इस हकीकत के नुजूल की वजह से ये रात अजमत रखती है। अलबत्त ये रात गुज़श्ता अंबिया में थी लेकिन शायद अवाम में इस कदर नहीं थी, अंबिया के लिए मखसूस थी ये रात या कुछ इस तरह की सिचुएशन थी, बहरहाल उस डिटेल में हम नहीं जाते। दूसरा जो दूसरी बड़ी वजह नजर आती है हमें, वो अल्लाह के वली से ये रात ताल्लुक रखती है, यानी ये जो अल्लाह के वली से इस रात का ताल्लुक है, यानी विलायत के दायरे के अंदर जो लोग कंप्लीटली रहते हैं, वो असली हकीकी या कामिलो मुकम्मल शक्ल में शब कदर का इदराक कर सकते हैं या शब कदर से बहरामंद और फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जहां कुरान सामित की हकीकत के नुजूल की सबब ये रात फजीलत पा रही है, तो दूसरी तरफ ये हकीकत वलीयुल्लाहिल कामिलिल अकमल के ताहिरो मुतहर वजूद की वजह से है। लिहाजा इन दोनों से बराबर मुतमस्सिक व तमस्सुक व तवस्सुल ही इस रात के इदराक की पूरी मीनिंग और पूरे माने हमें हासिल होंगे या हमें मिल जाते हैं, नाकिस शक्ल में नहीं होंगे। क्योंकि अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वलियुल्लाह की विलायत का वो हम नहीं समझते हैं। जुमला मैं कहने वाला हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे एक्सप्लेन करो, मैं कहूंगा मुझे नहीं पता है, ये एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। वलियुल्लाह के विलायत का उरूजो इंतहा इस रात है। मसलन क्या मतलब है? कुरान मजीद में अल्लाह सुबहाना व तआला जिनाबे हजरत मूसा और बहुत से नबियों के बारे में, इवन हमारे नबी सलवातुल्लाह व सलाम अलैहि के बारे में भी, उनकी सीरत में भी मिलता है कि कुछ जिंदगी में कुछ हिस्से, साल में कुछ हिस्से, कुछ अय्याम ऐसे होते थे वो अल्लाह सुबहान व तआला के साथ आलम तन्हाई में मखसूस एक कैफियत व मुनाजात की घड़ियां होती थी। वो हत्ता शहर को छोड़ देते थे बाज़ औक़ात। हजरत मूसा कोहे तूर चले गए। कुरान कहता है वअदना मूसा 30 लैला। अरे बाबा, जनाब मूसा 30 डेज के चिलकशी में, वो सूफियों वाला चिलकशी नहीं है ये, 13 डेज मुनाजात लिकाउल्लाह के लिए, मुलाकात इलाही के लिए, 30 डेज के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया, जैसे 30 दिन का हम रोजा रखते हैं। चले गए और वो 30 डेज में जैसा कि लगता है, ऐसा है कि जिनाब हजरत मूसा सक्सेसफुल नहीं हो सके। वो जो उरूज जिनाब हजरत मूसा था, शायद वो हासिल नहीं हुआ, इसलिए खुदा फरमाता है जिनाब मूसा ने 30 डेज शायद कोशिश की, लेकिन बाम उरूज तक नहीं शायद रसाई पा सके। अब खुदा जानता है वो उरूज क्या होता है। वो कह रहे हैं हमने 10 दिन और ऐड कर दिए उसके अंदर, अब अतमन्ना हो गया अशरा, हमने 10 डेज और उसमें ऐड कर दिए। और फिर जाकर हजरत मूसा उस मकाम में, वो जमा खुदा जानता है वो मकाम क्या है, उसको हजरत मूसा ने जाकर पा लिया और कलीमुल्लाह बनकर लौट आए। इसी तरह जो है, इस तरह है लैलतुल कदर भी, इस तरह है लैलतुल कदर ऐमे मासूमीन अलैहि सलाम के लिए वो खास मरहला है, जब वो मुनाजात इलाहिया में, उस आलम तन्हाई में मुनाजात इलाहिया और विलायत के उरूज में होते हैं। परवरदिगारा ये उरूज क्या उरूज है? जिस उस मौला के लिए कि जो मौला ये फरमाते हैं कि मैं तो उस मकाम पर हूं कि लव कुशिफल गिता उलम मजदत तो यकीन, अगर पर्दे हट भी जाएं मेरे लिए कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए पर्दे कोई मानी ही नहीं रखते हैं। अब खुदा जानते हैं ये इस मकाम है इंतहा पर बैठी ये अजीमुल मर्तबत मलकूती हस्ती मौलाए कायनात, जब इस रात में मुनाजात करते हैं तो क्या और उरूज है, खुदा जानता है। बस मैं एक हदीस का लाइटली तर्जुमा और इशारा कर सकता हूं, क्योंकि ये खतरनाक वादियां हैं और ये मतलूब भी नहीं है, हमसे डिमांड भी नहीं किया, हमारी दस्तरस भी नहीं है, तो इसके ऊपर जोर मैं नहीं लगाऊंगा। इसीलिए फरमाया कुन्ना फी कैनूनति ही, हम कुन इलाही में शुरू से मौजूद थे। खुदा जानता है कुन इलाही में मौजूद होने का मतलब क्या है, खुदा जानता है कि उरूज का मतलब क्या है, ये रात अइम्मा के लिए क्या माने रखती है। हम जमीन वाले गुनाहगार खाकी लोग हैं, हम अपने मसाइल हल कर लेते हैं, लिहाजा आज की ये जो रातें हैं, ये रातें कुरान और इतरत से मुत्तसिल हैं। मलकूत का दरवाजा मुल्क की जानिब खुलता है, मतलब आलम मलकूत, आलम वो जो उरूज इलाहिया है, आलम हकीकत है, उसके दरवाजे जमीन वालों पर ही खुलते हैं, हम खाकी लोगों के लिए खुलते हैं और कहते हैं चाहते हो उरूज करो, चाहते हो ऊपर आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। आम हालात में तो तुम्हें दरवाजे खटखटाने पड़ते, तुम्हें दस्तकें मारनी पड़ती, सारी जिंदगी भी तुम दस्तक मारते शायद खुलता नहीं, क्योंकि तुम इस लायक ही ना होते, लेकिन आज तो हमने खुद ही खोल दिया है, बहुत ईजी है, सबके लिए खोल दिया है, रहमत ही रहमत है हर तरफ, शैतान को भी हमने तो बांध दिया है, खुद शैतान ना बनो तो आराम के साथ आ सकते हो। और खास कर ये जो 3 रातें हैं, इन 3 रातों में फाइनल रात में सिग्नेचर करवा दो तो आराम से मलकूत के दरवाजे खुल जाएं, खुले हुए हैं, आ सकते हो, अगर ना सारी जिंदगी बीटते रहोगे, कूटते रहोगे, मलकूत का दरवाजा तुम खुद में तो ये सलाहियत नहीं है कि तुम उसको खोलो। सूरह कदर के अंदर फरमाया, और सूरह कदर को सूरह विलायत भी कहते हैं, अगर चीज के अंदर विलायत का लफ्ज मौजूद नहीं है, इमामत का लफ्ज नहीं है। हमारे आइमा ने फरमाया कि जब आप किसी से बहस करते हैं तो सूरह कदर को क्यों नहीं बहस करते, सूरह कदर को दलील के तौर पर क्यों नहीं लाते हैं, कि सूरह कदर में ये फरमाया तनजुलुल मलाइका मलाइका नाजिल होते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं। अब फरिश्ते कोई मटेरियल तो है नहीं भाई, फरिश्ते किसी परिंदे का नाम नहीं है, फरिश्ते किसी कबूतर का नाम नहीं है कि वो उड़ते हुए आ जाएं, किसी की मुंडेर पे जाके बैठ जाएं, या किसी के घर के सहन में उतर जाएं, या किसी की विंडो में आ जाएं। तो कोई कबूतर तो है, कोई मटेरियल तो है नहीं है कि इनके नाजिल होने और उतरने और बैठ जाने का मतलब हम मटेरियलिस्टिक जो मादी जानवर इंसान उस तरह का हम ले लें। ये नुजूल तो समझाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब कुरान भी तो कोई मटेरियल तो नहीं था ना कि ऊपर से नाजिल हुआ था कल्बे पैगंबर पर। तो नुजूल का लफ्ज कुरान के लिए भी आया, फरिश्तों के लिए भी नुजूल का लफ्ज आ रहा है। तो ये फरिश्ते जब नाजिल होते थे तो ये रूहानी नुजूल है, ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, मिटाफे ये। तो ये नुजूल कहाँ पॉसिबल होगा भाई, आखिर जमीन में किधर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये नुजूल हो सके जब मटेरियल नहीं है। तो डेफिनेटली इन फरिश्तों के साथ हमाहंग कोई ऐसी पहाड़, लेकिन कहा हुजूर पाक जैसी अजीम उल मर्तबत हस्ती का कल्ब ताहिर और मुतहर इस कुरान को सह सकता है, उसमें समो सकता है। बस ये फरिश्ते जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तगान जब नाजिल हो रहे हैं शब कदर में, जमीन में किसी ऐसे वजूद का होना जरूरी है जिसमें ये कैपेबिलिटी सलाहियत मौजूद हो, उसके साथ हमाहंग हो, जो इन फरिश्तों को अपने यहाँ वेलकम कर सके, अपने हुजूर इन फरिश्तों को बेसरा कबूल कर सके। अब ये वजूद कौन है, कौन ऐसा वजूद हो सकता है? ये वजूद वली ये जमान है, हर जमाने का जो वली है वो वली है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि मुल्क को मलकूत को जोड़ सकता है, फरिश्तों का इस्तकबाल कर सकता है, मलकूत के दरवाजे जमीन पे खुलवा सकता है, खाकी इंसान को बामे उरूज आदमियत पर पहुंचा सकता है। इसलिए हमें आज से कहा तवसुल करो, वलीउल्लाह से तवसुल करो, क्योंकि वलीउल्लाह से तवसुल इंसान को नजात दिलाता है। तारीख में हमने देखा है जिस गुनाहगार ने, जिस खताकार ने बड़े से बड़े गुनाह का मुर्तकिब हुआ है, बड़े से बड़े जुर्म का मुर्तकिब हो गया है, जब भी वलीउल्लाह से मुतवसिल हुआ है उसने नजात पाई। और कुरान भी कोट करता है, नबियों को कहता है नबियों अपनी उम्मत के गुनाहगारों के बारे में दुआ करो ताकि बख्शे जाए वो। और आप देखें कि करबला में होर ने जितना बड़ा जुर्म किया था, हमने तो इतने बड़े जुर्म नहीं किए होंगे ना, होर ने मासूम को जिस तरह रोका, रास्ता गुस्ताखी की, हरासमेंट किया अहले हरम को, हमने किसी इमाम के नऊज बिल्ला होना से हम इतने गुनाहगार तो नहीं है, हमने किसी वलीउल्लाह इमाम मासूम किसी नबी के रास्ते नहीं रोके, उनकी खानदानों के लिए रुकावटें नहीं बने, डराने का नऊज बिल्ला सबब तो नहीं बने है ना। वो कितने बड़े गुनाह होंगे, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है? इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता है। वो वलीउल्लाह अपने कातिल, मौला अपने कातिल के बारे में इब्ने मुलजम लानती के बारे में कहते हैं कि मेरे बेटे बात सुनो, इसने एक बार किया है इसके ऊपर, एक अगर मैं खुद ही जिंदा बचा, जिंदा रहा, मैं खुद ही फैसला करूंगा। फिर क्या फरमाते हैं, बेखुदा मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है इंतकाम लेने से, बदला लेने से, किसास लेने से ज्यादा अच्छा माफ करना है। या अल्लाह, ये वलीउल्लाह कातिल के बारे में। मैं अब मसाइब में जुमले कहना चाहता था लेकिन अब मुनासिबत आई कह देता हूं। दूध का गिलास आता है मौला के हुजूर, एक गोंद लेते हैं, इब्न मुलजम सामने खड़ा है, हाथ बांधा हुआ है, सामने खड़ा है, गुफ्तगुशनीद हो रही है, इब्न मुलजम से बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। एक गोंद दूध का लेते हैं, कटोरे को अपने कातिल की तरफ बढ़ाते हैं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला। ये अफसाने नहीं है, ये हकीकतें हैं। एक ऐसे मौला को हम मानते हैं, हमारे फुकाहा कहते हैं, आप बताएं ना कि एक ऐसे वली के हरम की चौखट का बोझा हम क्यों ना लें, जब इतनी बड़ी अजमत हो, इंसानियत हो, उरूज नजर आ जाए, हम कैसे उस वली की चौखट पे ना जाएं, उनके दर व दीवार के बोझे ना लें, उनकी इस अजमत के सामने ना झुके, क्यों ना झुके? आखिर ये अजमत है, हमने ऐसे गुनाह तो नहीं किए, हम इतने गुनाहगार तो नहीं है, ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन गुनाहगारों को मुहर को माफी दी। इब्न मुलजम के लिए चांसेस मौजूद, उसकी बदबख्ती थी, तौफीक नहीं मिली। चौथे इमाम जो है यजीद के बारे में कहते हैं, अल्लाह की रहमत यजीद के जुर्म से बड़ी, जुर्म से वसी, तौफीक खो चुका है वो। ला हौला वला कुव्वत, हम इतने गुनाहगार हैं नहीं है, तो क्यों हम शबे कदर से महरूम हो जाए, क्यों तवसुल ना करें इन अवलिया अल्लाह से। बिका या अल्लाह उसे शुरू होते हैं, बिल हुज्जती तक पहुंचते हैं। तो कितना मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट लगते हैं। बहुत से बदबख्त हैं, बेखुदा अपनी जिंदगी में शबे कदर के अमाल नहीं कर चुके होते हैं। आते हैं, चार हाथ सीने पे मारते हैं, दो जो है आंसू बहा के सोचते हैं, बड़ा एहसान कर दिया है मैंने कुरान इतरात के ऊपर, चले जाते हैं ये आमाल किए बगैर। अरे बाबा, ये आमाल उसी वली ने तो सिखाए हैं। लोग बिस्तर मर्ग में होते हैं, ऑक्सीजन लगा होता है अस्पतालों के अंदर, अब यकीन करें। वो कहते हैं कि आजकल तो हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन का जरिया आ गया, वसाइल आ गए हैं लाइव करने का, ऑनलाइन करने का, उस जमाने में नहीं था। वेंटिलेटर पे बैठे हुए बंदों को, मरीजों को हरम इमाम रजा में लाया था, पाकिस्तान के अंदर हमने खुद देखा है। वो मरीज जो ऑक्सीजन में है वो कहता है शब कदर है, नहीं मुझे इमाम बारगाह ले जाओ, मुझे शब कदर के अमाल में कम से कम बाहर लेटा के रख दो मुझे। हमारे यहाँ इलाके में -20, बाज औकात जो है -25 टेम्परेचर होता था। बुजुर्ग उम्र आदमी अस्पताल में, वो कहता शब कदर की रात है, मैं कैसे बिस्तर अस्पताल में रहूं, मुझे इमाम बारगाह ले जाओ, करीब तरीन इमाम बारगाह में रखो, बेशक सर्दी से मैं मर जाऊं। लिहाजा हर चीज खुदा कहता है, देखो हमने हर चीज को जो है ना इन दो चीजों के अंदर रखी है, किसमें, कुरान सामित में, अल्लाह की किताब में, और कुरान नातिक में यानी वलीउल्लाह में। सूरह नहल की आयत नंबर 77 में क्या फरमाया, वलिल्लाहि गैबु समावाति वल अर्ज, यानी आसमान और जमीन में जो कुछ गैब की चीजें हैं उसका इल्म अल्लाह के पास है। सूरह नमल की 75 में फरमाया, वमा मिन गाइबतिन फिस्समाई वल अर्ज इल्ला फी किताबिन मुबीन, जमीन और आसमान में कोई भी पोशीदा गैब चीज नहीं है मगर ये कि हमने उसे किताब मुबीन में रखी है। सूरह नमल 75 किताब मुबीन कुरान में रखी है। सूरह यासीन की आयत नंबर 12 में फरमाया, वकुल्लु शैइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन, देखे ना क्लियर क्लियर कह रहा है, ये दो चीजें बाबा। आज की रात आपने तवसुल करना है, तमस्सुक करना है, कुरान सर पे रखना है, 14 मासूमीन अल्लाह की जात वहदहू से शुरू करके तवसुल करना है, क्योंकि हर चीज इस इन दो के अंदर है। फरमाया कि वल अर्ज इल्ला फी समा वल अर्ज इल्ला फी किताब मुबीन कुल्लु शैइन अहसैनाहू फी इमाम मुबीन, सारा कुछ इसके अंदर रखा हुआ है। ये मेरा दूसरा पॉइंट और दूसरी गुजारिश थी, पहले अपने लिए फिर सब आप बहन भाइयों के लिए। तीसरा पॉइंट, वो मौला की अजीम उल मर्तबत शख्सियत और हस्ती से ताल्लुक रखते हैं। दो पहलू को पर खुलासतन बात कर सकते हैं, बात कहने के लिए और समझने के लिए, वरना मौला की शख्सियत के बारे में ये जुमले बिल्कुल ही कह नहीं सकते कि दो पहलू पे अहाता करेंगे, चार पे करेंगे, ये बातें समझाने के लिए मजबूरी है, क्या कैसे बात करें, वगरना ये जुमले बिल्कुल भी फिट नहीं। हकीकत में ऐसा है, कोई आशिकाना शायराना बातें नहीं कर रहा, सच्चाई ऐसी है। जितनी ज्यादा हम इस हस्ती के बारे में एक थोड़ी सी माइक्रो लेवल पे मारिफत पाते हैं, इतनी ज्यादा इसकी अजमत और बुलंदी के सामने इंसान झुकता चला जाता है, और इस हस्ती की शख्सियत की वसअत और गहराई और आफाकियत और अबदियत के सामने अपने आप को आजिज और कमजोर और नातवां और हकीर पाता है, और सोचता है कि मैं कुजा, ये अजीम हस्ती कुजा। जो दो पहलू हैं, वो एक पहलू अर्ज से ताल्लुक रखता है, जमीन से, आलम इमकान से, दूसरा समा से ताल्लुक रखता है यानी मलकूत से। एक पहलू इंसानी है, दूसरा मलकूती है। आप इसी को अर्जी कहें, समावी कहें, आलम इमकान कहें, आलम हकीकत, मुख्तलिफ इसके वर्ड बन सकते हैं। आलम मलकूती पहलू पे बात करते रहते हैं, मैं कताबी भी थोड़ी हमने गुफ्तगू की, लेकिन मुझे थोड़ा सा अर्जी पहलू पे आना है। वो जो आलम इमकान में बेनवान हादी बरहक और रहबर और रहनुमा व कायद उम्मत बनकर तशरीफ लाए हैं, वलीउल्लाह और इमाम बनकर, तो मखलूक खुदा की तकलीफ मौला की तकलीफ है, ये जहन में रखें। ये कुछ शायरी नहीं, हकीकत है, वाकया मखलूक खुदा, ना मौला के मानने वालों की तकलीफ, मुसलमानों की तकलीफ नहीं, मखलूक खुदा, सिर्फ इंसान भी नहीं। مخلوق خدا تکلیف میں ہے، گویا علی محسوس کرتے ہیں، مولا محسوس کرتے ہیں، وہ خود تکلیف میں. خالق خدا کا درد مولا سمجھتے ہیں ان کا اپنا درد. لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے. جناب عثمان ابن حنیف جو کہ آپ کے ہی گورنر تھے، ان کی اس دعوت کے حوالے سے مولا نے جو اعتراض کر کر جو خط بھیجا ہے، اعتراض کیا ہے، صرف اسی خط کے میں عربی پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں، اسی سے اندازہ لگائیں. جناب عثمان گورنر ہیں، ایک ایسی دعوت میں شرکت کرتے ہیں جس دعوت میں ایلیٹ کلاس کو انوائٹ کیا گیا ہے. اس شرکت پر مولا ناراض ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وما ظننت انک اجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو وغنیهم مدعو. مجھے تو یہ خیال نہیں تھا عثمان ابن حنیف میرے گورنر، کہ تم ایک ایسی دعوت میں چلے جاؤ گے جس دعوت میں معاشرے کے کمزور غریب طبقے کو نگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا ہے، اور اس کے جو امیر اور ایلیٹ کلاس لوگ ہیں ان کو وہاں پر بلایا گیا ہے، اشرافیہ کی دعوت تھی، تو تم وہاں چلے گئے ہو. یہ نہیں فرمانے تم اچھا کھانا پینے کے لیے کیوں گئے تھے، اچھا کیوں پہنا تھا، یہ بات نہیں ہو رہی، کہ ایسی دعوت جس میں غریبوں کو نظر انداز کیا گیا، نگلیکٹ کیا گیا، ان کو اہمیت نہیں دی، اس میں تم کیوں چلے گئے. پھر فرماتے ہیں دیکھو عثمان، بات غور سے سنو ابن حنیف، ولو شئت لاحتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القبي ونساجد هذا القصر. کہہ رہے دیکھو سنو، ایسا نہیں ہے کہ میرا اپنا ہاتھ پوچھتا نہیں ہے تو نعوذ باللہ انگور کھٹے والی بات، ایسی نہیں ہے ابن حنیف. میں چاہوں نہ علی اگر چاہے تو اعلی کوالٹی کی ہنی یا شہد کھا سکتا ہے، اعلی کوالٹی کی گندم کھا سکتا ہے، اعلی کوالٹی کے مختلف ڈشیں اور ڈشز اور کھانے کھانے کی علی میں ہمت ہے دنیاوی اعتبار سے بھی. میں کوئی فقیر و غریب آدمی نہیں ہوں، مالی لحاظ سے کمزور آدمی نہیں، میں محنت کرتا ہوں، بنجر زمینوں کے سینے چیر کر آباد کرتا ہوں، لہٰذا اس اعتبار سے بھی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے. پھر کیوں نہیں کھا رہے ہیں مولا؟ کیا یہ حرام ہے؟ ایسا کھانا، اچھا کھانا کھانا، اچھا پہننا جائز نہیں ہے مولا؟ کہتے نہیں یہ مسئلہ نہیں، ولیکن ہیہات ان یغلبنی الہوا ویقودنی شجعا الی تخدیر الاطعمہ. کہتے فرماتے ہیں کہ لیکن ہوا یہ نفس مجھ سے دور رہے، اس کا غلبہ مجھ پر ہو یہ ممکن نہیں ہے. حرص و رغبت ہو، یہ جو حوث ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ مجھے کھانے پینے کے انتخاب اور مینو کے پیچھے لگا دے کہ میں یہ کھاؤں گا میں وہ نہیں کھاؤں گا، پک اینڈ چوز کے پیچھے لگا دے، ہایا ہوائے نفس کا مجھ پر غلبہ ہو جائے، ہائی ہا یہ مجھ سے دور ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایسا کیوں مولا؟ یہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، شکر منعم ہے، تشکر کرنا ہے. مومن اچھا کھانا نہیں کھا سکتا کیا؟ مومن اچھے ریسٹورنٹ میں آج کے حوالے سے، اچھے مینو میں اچھے کھانے کا انتخاب نہیں کر سکتا کیا؟ آپ نہیں فرماتے ہیں کہ جب دعوت دو کسی کو تو اچھا کھانا کھلاؤ؟ کیا آپ کی سیرت میں بھی ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے؟ تو آپ اس حد تک اپنے گورنر کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے بارے میں اتنی سخت زبان کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس کے پیچھے حکمت کیا؟ اب جو جملے ہیں ذرا غور سے سن لینا، اور اپنی عظمت مولا، فضیلت مولا کو سمجھ لینا کہ ہم کس عظیم ہستی کے ماننے والے ہیں. جب زیارت کے لیے جاؤ گے تو یہ عظمتیں ذہن میں رکھنا کہ کس ہستی کے دروازے پہ آئے. جواب میں فرماتے ہیں وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ اَوِ الْيَمَامِ مَنْ لَا تَبَالُ قُرْسِ وَلَا أَحْدٍ لَهُ بِالشَّبَابِ. یہ عظمت ہے، یہ عظمت و فضیلت مولا ہے. ہو سکتا ہے حجاز میں، یمامہ، اس پورے خطے میں کوئی ایسا انسان، ایک انسان ہو جسے روٹی کا ایک ٹکڑے کی امید بھی نہ رہ چکی ہو، جسے پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیونکہ میں اس کا امام ہوں، کیونکہ میں اس کا خلیفہ ہوں، تو میں کیسے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ میں کیسی ایسی دعوتوں میں شریک ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اعلیٰ کوالٹی کی گندم اور اعلیٰ کوالٹی کی شہد کھا سکتا ہوں کہ میری رعایا، میری ٹیریٹری میں، میری حکومت میں میرا کوئی ماننے والا اس عالم میں ہو کہ اسے آج رات پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا ہے اور ایک टुकड़ा रोटी के एक टुकड़े की उसे उम्मीद भी नहीं है कि कायर से कोई आकर उसे मदद करे, और वो ऐसी तकलीफ में हो, उसका इमाम, उसका हाकिम, उसका खलीफा, उसका सरबरा, वो पेट भर कर खाने खाए, आला क्वालिटी की गंदम खाए, आला क्वालिटी की दावतों में शरीक करे। ये दर्द खल्क के खुदा, ये मैयार इंसानियत, ये उरूज, ये तालीमात किसी भी इंसान के सामने जाएं ये अजमत नहीं रखती। शायद वो मलकूती बातें उसकी समझ में ना आए जो फिजिक्स और मटेरियल के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन ये बातें तो उसकी समझ में आती है ना। किसी को भी आप, किसी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, ईसाई, एथियस्ट, किसी के सामने भी जाके कहें मैं जिस इमाम को मानता हूँ, एक दफा कहें मैं जिस इमाम को मानता हूँ वो मलकूत को जानते हैं, वो मलकूती हस्ती को कहेगा भाई ये मलकूत छलकूत क्या है। जब कहेंगे मैं जिस इमाम को मानता हूँ ना, वो इमाम जब हुकूमत कर रहा था तो अपने गवर्नर पर एतराज किया, और एतराज करने की वजह ये थी। अब ये बताएं इस अजमत के सामने हर इंसान बिला तफरी के दीन और मजहब इस अजमत के सामने ताजीम के लिए झुकेगा या नहीं झुकेगा। ये फजाइल मौला हैं, खुदा के लिए हम अपनी तरफ से फजाइल और गैर फजाइल की डिफिनेशन देकर चीजों को रिमूव ना करें। फिर अगर हम जैसे मिस्कीन लोग जो कि हम खताबत भी नहीं जानते मेंबर पे आते हैं और ये बातें करते हैं, तो फिर बैठ के कहते हैं फजाइल तो पढ़े नहीं मौला के। अरे मौला के ये फजाइल नहीं है, इसको हम किस कटघरी में डालें? इस अजमत को, इस बुलंदी को, इस इंसानियत के उरूज को, इस बंदगान खुदा के दर्द के एहसास को किस में डालेंगे? ये फजीलत नहीं है। ला हौला। आगे फरमाते हैं अकना मिन नफ्सी बि अन युकाल हादा अमीरुल मोमिनीन वला उशारिकुहुम फी मकारिह दहर। उस्मान इब्ने हुनैफ, क्या मैं सिर्फ नाम और अलकाबात और टाइटल जो मुझे दिए जाएंगे अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, उसी पर खुश हो जाऊंगा कि सब मुझे अमीरुल के मोमिनीन कहते फिरे और लोग मुझे मशरिक़ व मग़रिब, तूल व अर्ज़ में फैली हुई इस्लामी हुकूमत के सरबराह कहते रहें और मैं इंजॉय करता रहूं इस टाइटल को, इब्ने हुनैफ, या फिर लोगों के दर्द और उसकी तकलीफ का मैं हिस्सेदार बनूं, उनकी तकलीफों का साथी बनूं, उनकी तकलीफों को महसूस करूं? इब्ने हुनैफ कहते अली उनकी तकलीफों का साथी है, टाइटल देने से अली खुश नहीं होता। वो और लोग होते हैं जिनको जो जबरदस्ती अमीरुल मोमिनीन ताकत के जरिए, पैसों के जरिए कहलवाते हैं। अजीजो ये हमारे मौला की अजमत है, ये उनकी बुजुर्गी है। लिहाजा आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो मसाइल की तरफ भी है और हकायक की तरफ भी है। आप जानते हैं कि मौलाए कायनात के कत्ल की जो साजिश है वो जंगे तहरवात के वक्त से ही शुरू हो गई थी। पलान होता रहा, फिर ये खाने खुदा में जाके इन मलूनों ने कसम खाया। तीन अफराद थे, तीन मुख्तलिफ अफराद के कत्ल के लिए, और 19 की रात जो है इब्ने मुलजम लानती वो अपने हदफ तक पहुंच सका, और 19 की रात जो है मेहराब इबादत में मौला के सर के ऊपर जरबत लगाई तो इमाम हसन मुश्तबा मौजूद थे, दौड़कर आगे गए, नमाज को मुकम्मल किया और फौरन अपने बाबा का सर अपनी गोद में लिया और कहने लगे बाबा जान हमारी तो कमर टूट गई। और अहले आराम इकट्ठे हो गए, मस्जिद में लोग थे, इमाम अली मकाम को किसी चादर में या किसी में रख के स्ट्रेचर की तरफ बना के इमाम हसन मुश्तबा सर पीटते हुए रोते हुए घर की तरफ लेकर चले गए। घर के सहन में जब दाखिल हो गए तो अहले आराम उम्मे कुलसुम, सानिया, जारा, ज़ैनब कुबरा, इमाम हुसैन, हरमदार अब्बास, दीगर जितने भी हैं सब कोहराम मच गया, वाविला करने लगे। आवाज दी, मुखातब इमाम हसन है, बड़े बेटे हैं, बेटा बेटा परेशान न हो, देखो ये तुम्हारे नाना, ये तुम्हारी माँ, ये तुम्हारी नानी जनाबे खतीजा सब मेरे इंतजार में है, ये सुनना था कि आहो बुखा में मजीद इजाफा हो गया। कातिल इमाम को उसी वक्त पकड़ा था, लेकर आ गए है इमाम के हुजूर, अहले हरम के हुजूर। बाज असहाब ने कातिल पर हमला करने की कोशिश की, इमाम ने मना किया। उस आलम में कहा खबरदार, कहा कि ये मेरा कातिल है, मुझ पर इसने हमला किया है, मैं खुद इसका हिसाब करूंगा, तुम में से किसी को ऐसी जज्बाती हरकत करने की जरूरत नहीं है। कहा ओ बदबख्त, जब कातिल इब्न मुलजम सामने आया तो इमाम ने फरमाया ओ बदबख्त इंसान, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा इमाम नहीं था? तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैंने तुम पर बड़े एहसान किए, इसके बावजूद कि मैं जानता था तू मेरा कातिल है, लेकिन मैंने कोई इकदाम नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया था और खुदा से दुआ कर रहा था कि तुम ये कदम मत उठाओ। उसके बाद इमाम हसन ने मुश्तबा की तरफ रुक किया और कहा, बेटा हसन, इसने मुझ पर एक हमला किया, एक वार किया, तुम इस पर एक वार करना, देखो इसकी आंखों में किस कदर खौफ है, किस कदर ये घबराया हुआ है। बेटा याद रखो, हम अहले बैत रहमतो मेहरो मोहब्बत के नुमाइंदे हैं। देखो बेटा, इसने मुझ पर एक जरब लगाई है, तुमने एक जरब लगानी है। खबरदार बेटे, किसी को इजाजत न देना कि गुस्से में आके इसके हाथ और पेट काट दे, कोई इसके पैर काटे, कोई हाथ काटे, कोई इसकी आंखें निकाले। खबरदार बेटा, ऐसा करने न देना, कुफे के लोग जज्बाती हो सकते हैं। दूध का कासा लाया गया, एक घूंट पी लिया, दूध का कासा अपने कातिल की तरफ बढ़ाया। इसी दौरान में जनाबे उम्मे कुलसूम कहने लगी, इंशाल्लाह कि बाबा के ये जख्म ठीक होंगे और इंशाल्लाह कि बाबा सेहतयाब होंगे। ये वो घड़ी थी कि इब्ने मुलजम मलऊन, जब किसी पे लानत पड़ती है तो फिर लानत की इंतहा देखें कि वो असफल साफिलीन में जाता है। ये मलऊन इब्ने मलऊन कहने लगा उम्मे कुलसूम की तरफ मुड़कर, नहीं खुदा की कसम, मैंने ऐसा जहर लगाया है कि अगर 100 अफराद में वो जहर डिवाइड करके तकसीम करके अगर उन्हें दिया जाए तो उनमें से कोई एक भी नहीं बचेगा। ये जुमले सुनने थे, एक मरतबा फिर कोहराम उठा, वा अलिया वा मुहम्मदा। इमाम ने वसीयतें शुरू कर दी, फरमाया, मेरी औलादो, मेरे बाद अपने वक्त के इमाम के साथ रहना, मेरे बाद तुम्हारा इमाम मेरा बेटा हसन मुश्तबा है। फरमाया, बेटा हमेशा जालिम के मुखालिफ रहना, फरमाया बेटा मजलूम के हामी रहना, कमजोरों यतीमों का ख्याल करना। उसके बाद फरमाया, सिवाय फातिमा की औलाद के बाकी तमाम मेरे बेटे बाहर चले जाएं, मुझे कुछ खास बात करनी है। इन जुमलों के साथ बाकी जितनी भी औलादें थी वो घर से बाहर जा कमरे से बाहर जाने लगी। देखा गया कि अलमदार अब्बास भी दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। मौला उस आलम में तड़प, अब्बास जी, बेटा अब्बास, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा कि बेटा मुझे बहुत कुछ तुम्हारे सुपुर्द करना है, लौट के आ जा। रिवायात कहती है कि अलमदार अब्बास नजदीक आए तो अलमदार अब्बास के हाथ को पकड़ा, इमाम हुसैन के हाथ को पकड़ा, इमाम हुसैन का हाथ अलमदार के हाथ पर रखा और कहा, बेटा हुसैन का साथ न छोड़ना, हुसैन के साथ रहना। उसके बाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम को कहा गया, आ जाओ, उनके हाथ को थामा, अलमदार के हाथ पर रखा। वसीयतें शुरू करते रहे, कुछ देर के बाद गशीश आ गई और आवाज आ गई, इन्नल्लाह मअल्लज़ीन अत्तकू अल्लज़ीन हुम मुहसिनून। अर्श इलाही की तरफ परवाज कर गई। 4 ताबूत वसीयत के मुताबिक तैयार किए गए, इमाम के जिनाजे पे मखसूस जिनाजा है तारीख में, उसके बाद किसी के जिनाजे में न पढ़ी गई न पढ़ी जा सकती है। 7 तकबीरों के साथ जिनाजा पढ़ा, एहले हरम थे सिर्फ और सिर्फ करीबी कुछ अफराद साथ में थे। 4 मुख्तलिफ ताबूत 4 मुख्तलिफ सिमतों में निकले, क्योंकि खतरा था कि इमाम के कब्र की बेहरमती हो जाए। और जब असली ताबूत उठा तो देखा कि आसमान से इजराइल और मिकाइल और जिब्राइल उतर रहे हैं, कह रहे हैं, या मौला, एक हिस्सा आप उठाइए, खुदा का हुक्म है, दूसरा हिस्सा हमने उठाना है। इमाम का जनाजा निकलने लग गया। मैं यहाँ पे रुकूंगा, कहूंगा, मौला आपका जनाजा घर से उठ रहा है, आपकी औलाद उठा रही है, मौला आपको गुस्ले कफन भी दिया गया, लेकिन ला योमी कयोमी कया अबा अब्दिल्ला करबला में। इमाम जैनुल आबिदीन एजाज इमामत से जब लौट के आए थे उस रात को बनी असद के साथ अपने बाबा के जनाजे को, बनी असद ढूंढ के परेशान थे कि किसका जनाजा किसका है, कौन सा जनाजा किसका है, क्योंकि किसी जनाजे में सर नहीं था। करीब आए, बाबे के जनाजे से लपटे, लिपट के कहने लगे, बाबा जा, मुझे माफ करना, बस नियत खुदावंदी थी। ला यौमिका यौमिका या अबा अब्दिल्ला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولا عاقبة لأهل التقوى واليقين. मातम से पहले मैं चाहूंगा कि बस कुछ दुआया जुमले, ये कबूलियत दुआ की घड़ी है। परवरदिगारा परवरदिगारा हमारी इन कलील सी इबादतों को, परवरदिगारा हमारी इस जिक्र कुरान और इतरत को आप अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगारा हम तेरे गुनाहगार और खताकार बंदे हैं। ये माह मगफरत है, माह रहमत है, माह उरूज आदमियत है, माह विलायत और कुरान और इतरत है। परवरदिगारा इसके सदके में हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों से दरगुजर फरमा। परवरदिगारा 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 हम तेरे मोहताज बंदे हैं, हकीर बंदे हैं, जलील और पस्त बंदे हैं। हमारी मगफिरत फरमा और परवरदिगारा हमारी मोहताजी को इस दुनिया व आखरत दोनों में दूर फरमा। शिफात कुरान और इतरत हमारे नसीब फरमा। परवरदिगारा हमारे मरहूमी जो इस दुनिया से चले गए हैं, खुसूसन जिनवा शहर के अंदर रहने वाले अजीज व अकरबा जितने भी हैं, उनके मरहूमी जो दुनिया से रहलत कर गए हैं, शोहदा जिनके दर्जात बहुत बुलंद है, उलमा जिन्होंने खदमात अंजाम दी, मखसूसन इस शहर में आके जिन उलमा ने जिनवा के अंदर आके खदमात अंजाम दी हैं, आज अल्लाह को प्यारे हैं। परवरदिगारा सबको अपनी रहमत वासिया में जगह इनायत फरमा। मखसूसन परवरदिगारा परवरदिगारा मरहुमा शौकत जहां बिनते रियाजुल हसनैन और हमारे अंकल मोहसिन इस कम्युनिटी के, परवरदिगारा हमारे मुबारक अंकल मुबारक हुसैन इब्ने इंतजार हुसैन, परवरदिगारा परवरदिगारा इनके दर्जात को मजीद बुलंद फरमा। आलम बरजख में आलम अरवाह में परवरदिगारा आज के इन दिनों में जवार अइम्मा में परवरदिगारा दीदार अइम्मा दीदार अवलिया अल्लाह दीदार परवरदिगारा अम्बिया अल्लाह इनके नसीब फरमा। परवरदिगारा परवरदिगारा इनके जितने बाजमानदगान हैं, जितने भी अजीज व अकरबा हैं, परवरदिगारा इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। आखिरी दुआ ये कि परवरदिगारा ये मोमिनीन व मोमिनात जो दीन के सुतून हैं, मुखलिसाना तौर पर तेरे दीन के कयाम के लिए मजलिसों का इनेकाद करते हैं, दामे दिरहमे सुखने कदमे कंट्रीब्यूशन करते हैं, परवरदिगारा परवरदिगारा इन सुतूनों को मजीद इस्तेहकाम इनायत फरमा। और जो इस तरह की कंट्रीब्यूशन करते हैं उनकी जान व माल व औलाद में, उनकी दुनिया व आखरत में खैर व बरकत का नुजूल फरमा। उनकी जो भी हाजात हैं अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मातम हुसैन मातम अली इब्न अबी तालिब या अली या अली।